हेलो ओम शांति त्रिमूर्ति शिव जयंती के इस पावन अवसर पर बाबा मिलन के लिए पधारे हुए सभी बाबा के नूरे रत्नों का मीठे बाबा के घर मधुबन में सो अपने घर में हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। मीठा बाबा हम सभी आत्माओं को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं और ज्ञान रत्न दे करके हम सभी को भी बाबा ने रत्न बना दिया है और साथ साथ अपने ऐसे बच्चे भी तैयार किए हैं जो उन रत्नों को बांट करके अनेक रत्नों को भी पैदा कर रहे हैं। तो इसी रत्नों के एक और व्यापारी कहें आज आपके सामने भोपाल जोन की आदरणीय हमारी राजयोगिनी मीनाक्षी दीदी हैं। आप नरसिंहगढ़ सेवा केंद्र पर सेवा दे रही हैं और पिछले 48 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं। आप ज्ञान की मीठी लोरी बहुत अच्छी देती हैं और साथ साथ बहुत अच्छे ही ज्ञान रत्नों से सभी आत्माओं को भरपूर करती हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय मीनाक्षी बहन जी से कि आप सभी को भी ज्ञान रत्नों से भरपूर करें। आदरणीय बहन जी
ओम शांति। हम सभी कल्प पहले वाले बाबा के लाडले सिकी लधे नूरे रतन कल्प चक्र के बाद फिर से आकर मधुबन संगम पर मिले हैं और मिले हैं किस आधार से, वह मीठी प्यास कहें, भूख कहें, तृप्ति कहें या प्राप्ति कहें, जिन्हें ज्ञान रतन कहा जाता है, वही हमारे आपस में मिलन का आधार है, उद्धार का भी आधार है, आधार ही आधार है। बिना ज्ञान रत्नों के हम आपस में खेल पाल भी नहीं कर सकते, खान पान भी नहीं कर सकते, चैन की नींद भी नहीं सो सकते, लेन देन भी नहीं कर सकते, तो देना लेना भी नहीं कर सकते। ज्ञान नहीं तो क्या थे? विचार करो, अंधकार में थे। हमें वह अनुभूति, वह शक्ति का या अनेक समस्याओं से सुलझने का, अनेक बिगड़ी बातों को बनाने का, समस्याओं को सुलझाने का पता ही नहीं था। और ही सुलझने सुलझाने की बजाय उलझन में पड़े हुए थे और अपनी उलझन को हम गा भी रहे थे। उस प्यारे पिता से प्रतिज्ञा, वादे, व्रत, अनेक प्रकार के पठन पाठन, तीर्थाटन, देशाटन, दान पुण्य नहाना स्नान क्या क्या न कर रहे थे। मूल कारण था कि ऐसी प्राप्ति हमको हो जाए जिससे हमको एक सहज रास्ता मिल जाए, जिसको दूसरे शब्दों में कहे सदमति, सदबुद्धि, सदज्ञान, और भक्ति के शब्दों में कहें तो सतगुरु, और ज्ञान के शब्दों में कहें तो नॉलेज इज लाइट माइट, सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए, ऐसा ज्ञान मिल जाए। वो मिल गया, अब मिल तो गया परंतु आवश्यकता है उस ज्ञान को समझना। वस्तु हमको प्राप्त हो गई, पॉइंट्स हमको प्राप्त हो गए, मुरली हमको मिल गई, अनेक प्रकार के प्रवचन आदि हमने सुन लिए, फिर भी आवश्यकता है उसका मनन चिंतन करके समय पर उसका प्रयोग करने की। तो प्रयोग का नाम है ज्ञान, और उपयोग सदुपयोग का नाम है योग। ज्ञान वास्तव में दान शब्द से जुड़ा है, ज्ञान दान। पर एक बहुत राज की बात है, ज्ञान हम दूसरों को दान नहीं देते हैं, वो तो हम अपना ही जीवन बनाने के लिए अन्य आत्माओं को वो हम सुनाते हैं, क्लियर करते हैं। वास्तव में उसका रिटर्न हमको ही वो बात स्पष्ट होती है सुनाने से कि ज्ञान है क्या। बहुत साधारण शब्दों में कहेंगे ज्ञान का मतलब है समझ, और समझ का पता कैसे पड़ता है कि हमको ये चीज समझ में आई। परिवर्तन, और परिवर्तन ही परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है। तो ज्ञान से हमको ये समझ मिली, और हमें ये चेक भी करना है कि किन किन चीजों में हमारा समझ के आधार पर, क्योंकि मैं शब्द पे जोर दे रही हूं, समझ के आधार पर परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन कौन सा स्थायी रहता है? जो आत्मा स्वयं को स्वयं स्वीकार करती है, अच्छा लगता है, महसूस होता है, अपने आप को वो अच्छा लगता है। और जिनका परिवर्तन देखा देखी बाहरी आधार से होता है, वह परिवर्तन आगे जाकर भारी लगने लगता है, जिसको मोटे शब्दों में कहेंगे ऐसा लगने लगता है, ऐसा लबादा हमने ओढ़ा हुआ होता है कि ज्ञान में हम चल रहे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि ज्ञान हम में कितना चल रहा है। जैसे एक व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन तो जीने का आधार करके करता है, पर जब उसका खून बनता है और वह नसों में प्रवाहित होकर शक्ति प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार के असंभव कार्यों को, बलशाली कार्यों को करता है, तो मालूम पड़ता है इसने भोजन अच्छा ग्रहण किया है, भोजन इसका पच रहा है। नहीं तो व्यर्थ ही जा रहा है। बस इतना ही है, हम खा रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहे हैं। तो अभी वर्तमान समय की पुकार है कि हम उस ज्ञान को जिसको नित्य मुरली में हम सुनते हैं, उन पॉइंट्स को हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन के रूप में हम देखें। जैसे ही हमने इस मार्ग को अपनाया तो हमारे जीवन में सबसे पहला परिवर्तन खान पान, इसमें आना बहुत आवश्यक है और आता है। पहली समझ हमको यहां पर शुद्ध अन्न लेने के रूप में मिलती है, जो पहला कदम संगठन के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर प्रत्यक्षता का कारण बनता है कि हम कैसा भोजन ग्रहण करते हैं। शुद्ध अन्न, जो सभी आप उस अन्न को ग्रहण करने के बावजूद ही यहां पर आए हैं और रोज ही यहां पर ब्रह्मा भोजन के रूप में पा रहे हैं, तो उस अन्न का जो संग या अन्न का जो सन्न कहेंगे, ताकत कहेंगे, हमारे मन बुद्धि में कितनी आई है और उसका प्रभाव आपके बोल चाल, रहन सहन, पहनने ओढ़ने से मोटे रूप में झलकता है। अगर शुद्ध अन्न हमारा होता है तो जैसा अन्न वैसा मन बनता है और मन ज्ञान की वृत्ति को पकड़ता है, ज्ञान नहीं पकड़ता है, कान ज्ञान सुनते हैं, सुने हुए पर मन क्या करता है, वृत्ति बनाता है, वाइब्रेशन बनाता है, वायुमंडल ओरा बनाता है। तो आवश्यकता है उस मन को यह समझाने की कि मैंने जो शुद्ध अन्न लिया है वो क्यों। जब आपके अंदर यह आत्मसात हो जाता है फिर कभी भी आपको अन्न ग्रहण कहीं भी किसी भी कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं आती। इतना समय सालों भी हम ज्ञान में सुनने के बाद एक छोटा सा पुरुषार्थ है अन्न का, बहुतों से पहुंचता है, पूरा पहुंच भी नहीं पाता है और धारण भी करते हैं बड़े भारीपन से, जैसे समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया है। अरे हम शुद्ध अन्न लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इसका भक्ति के रूप में, व्रत के रूप में लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया है, अन्न नहीं खाया, जल ग्रहण नहीं किया, शुद्ध अन्न के लिए बहुत पुरुषार्थ किया। वो भी समझते थे कि अन्न का प्रभाव है। तो आपने कोई भी नियम धारणा ली है उसको एक्सेप्ट करिए, अपने अंदर जैसे खून में वो घुल जाना चाहिए, आपको अलग नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि मैं ये अशुद्ध अन्न और मेरा शुद्ध अन्न, नहीं, मेरे स्वभाव क्या हो जाना चाहिए, व्रति क्या हो जाना चाहिए, मांग जिसको कहते हैं अंतर आत्मा की आवश्यकता, कि मैं हूं ही कौन, नशा सत्य ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन, मैं बच्चा, और मैं बच्चा माना ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य में रहे, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन करे और कराए, ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा ज्ञान, ब्रह्माचारी ब्रह्मा ज्ञान सुने और सुनाए, और ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और उठाए। हमारा काम ही है नित्य ब्रह्मा से, नाम ही पड़ा ब्राह्मण, जिनके लिए हमें नहीं कहना है, हमको देखकर सामने वाले को ये आएगा कि इन्हें मैं शुद्धन कैसे दे सकती, इतनी पवित्र आत्मा इन्हें हम कुदृष्टि से कैसे देख सकते हैं, इन्हें हम डिसरिगार्ड से कैसे बोल सकते हैं, इन्हें हम बिना आसन दिए कैसे बिठा सकते हैं। आना चाहिए, तब है आपका प्रभाव, ज्ञान आपके अंदर में आया, आपकी सोच आप दूसरे को दे रहे हैं कि मेरे लिए ऐसा करो, नहीं। आपका यदि ज्ञानी युक्त जीवन है तो सामने वाला धन्य समझेगा आपके लिए आसन देकर, आपके लिए शुद्ध पानी देकर। वो पहले ही बोलने लगेगा, आप तो ग्रहण नहीं करेंगे ना, आपके लिए मैं क्या इंतजाम करूं, आप कैसा भोजन खाएंगे, हमें नहीं कहना है। भले कितने वो अज्ञानी है, ज्ञान से इतना व्यक्ति के अंदर पावरफुल स्टेज आती है। पर कब? जब हमारा खान पान आत्मसात होता है, हमें अंदर से कहीं भी किसी भी भौतिक आकर्षण को देखकर स्वाद के रूप में हमारी जीवा कंट्रोल होती है। जैसे कि हमारे ही कर्मों के आधार पर बनी हुई रामायण में स्पष्ट बंदर भाव में दिखाया है कि हनुमान भी जब लंका में गए तो आपने देखा होगा कितना बड़ा मार्केट सजा हुआ था, लंका का मार्केट, आज की बॉम्बे का मार्केट है, क्या न मिलता होगा वहां पर। हनुमान ने क्या खाया? फल और फूल, है ना? कहीं पर उनको ये दिखाया? वो वास्तव में जो बंदर रूप दिखाया वो हमारे ही पिछले चंचल कर्मों का स्वरूप है। वो नर वही नहीं थे, वानर वो आत्माएं, वो नर थे जिन्होंने ऐसा नियम लंका माना, कलयुगी समाज में रहते हुए भी करके दिखाया। तो आज हम ही तो वो बच्चे हैं ना, हम कैसे अशुद्धन ग्रहण कर सकते। तो पहली समझ, पहली प्रत्यक्षता का कारण क्या बनता है कि आप शुद्ध अन्न ग्रहण करते हैं। आपके वस्त्र भी कम नहीं समझना आप, जो हमारी ड्रेस बाबा ने बनाई है वह ड्रेस है। हम कौन है? मैं आत्मा हूं, ये तो आप अंदर में जानते हैं ना। उसी दृष्टिकोण से जब आप उस सफेद वस्त्र धारण करते हैं, उसके लिए भी आपको ये आत्मसात करना पड़ेगा कि मुझे क्या पसंद है। ये आपकी पसंद ही है। बाबा ने हमें जो ड्रेस इस विद्यालय की दी है वो सफेद दी है। अभी देखो आप सब पुराने नए सभी बैठे हैं, नए पधारे होंगे तो दीदियों को खास इस बात पर मेहनत करनी पड़ी होगी। चलो वैसे नहीं पहनना, पर बाबा जिस दिन आएगा ना, दादियों से जिस दिन मिलेंगे ना, कम से कम उस दिन तो सफेद पहनना ना, एकाध दो ड्रेस तो सफेद ले चलो, कहा ना। पर अगर हमारी प्रैक्टिस आश्रम पर भी रोजमर्रा में क्लास में व्हाइट ड्रेस पहनने की, गुरुवार आदि को पहनने की, या त्योहार पहनने की, फंक्शन प्रोग्राम में पहनने की बनी होगी, तो मैं समझती हूँ ज्यादा तैयारी आपको मधुबन आने में नहीं लगी होगी, भारी नहीं लगा होगा। क्योंकि मेरी चॉइस इस रंगीन बाजार के अंदर क्या है? सफी एकदम क्लियर, मुझे भटकना नहीं है, मुझे कहीं देख के सोचना नहीं है मुझे क्या लेना है क्या पहनना है। जैसा मेरा मन व्हाइट बाबा बना रहा है, मेरी वस्त्र धारणा भी, अवधारणा भी कैसी बना रहा है? सफेद। तो ये मेरे को प्रिय होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने आपको कहा तुम तो नर्स हो, किसी ने कहा आप तो विधवा हो, किसी ने कहा क्या सफेद ड्रेस पहनते, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, थोड़ा सा झटका आया। नहीं, ये आना सिद्ध करता है भी आपने बाबा के इस नियम को थोड़ा सा घुटका खाया। बाबा ने कहता एक झुटका होता है नींद का गट, और एक होता मन का घुटका। ये सारी मायावी आत्माएं, मायावी चीजें आपको क्या दिलाती है? रियलाइजेशन। क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो? अगर आपने स्वीकार किया होगा प्रभु के आगे, जैसे भक्ति में आप जाते थे तो मूर्ति के आगे आंख मूंछ कर ऐसे करते थे ना, कि आप जो कहेंगे वो हमें शिरोधार्य, यही तो हमारा नमस्ते करना था ना। ऐसी नमस्ते तो नहीं थी कि भगवान कुछ भी कहो हम नहीं मानेंगे, पहली नमस्ते तो यही थी ना। तो हमने भगवान के पीछे अपनी चुनरिया भी कैसी कर ली, पहनावा उड़ावा भी हमारा बदल, खान पान भी हमारा बदल, अभी रहन सहन भी हमारा बदलना है और बदला है। क्योंकि संसार के नित्य व्यवहार में आते हुए हमें रहन में क्या करना है, ऐसी शब्द दूसरा नहीं है सहन, इसके अंदर हमारा आता है बोलो चाल, चाल और ढाल, हाल और चाल है, एक से शब्द बोल चाल, चाल ढाल, हाल चाल मिलकर बनता है। तो वो हमको कैसा चाहिए, बाबा ने देवी परिवार का या इस ईश्वरी परिवार का बोल चाल के लिए प्रथम नियम दिया है, कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। अब हरेक अपने दिल पर हाथ रखकर ये पूछे, इस आवाज की दुनिया से निकलकर फिर हम इस दुनिया में आए तो क्या हमारा हर जगह ये अटेंशन है, मेरे बोल चाल में ये है कि मुझे बोलना है, मना नहीं है, मना है क्या, पर वही बात मुझे धीरे पास जाकर नजदीक जाकर या दूर से भी बोले तो धीरे और प्यार से बोलना है। तो हम बाबा की इस शांति की दुनिया के लिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा ओम शांति का महामंत्र जपने वाली, थोड़ा थोड़ा सा भी अपनी वाणी के द्वारा आप ये सहयोग देते हैं तो इस प्यारे घर का आकर्षण, ज्ञान का प्रथम प्रूफ साइलेंस, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा स्वधर्म है, शांति घर से मैं आई हूं, तो कैसे झलकेगा, आपकी वाणी के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा। और इसके पीछे बहुत बड़ी त्याग छुपा हुआ है पाने की इच्छा, पानी तो है ही मुख्य पर जीवन के व्यवहार में आती है पाने की इच्छा। जहां पर पाने की इच्छा है, देने की दातापन की भावना नहीं है, पाने की इच्छा आवाज को बुलंद करती, कड़क करती। और कहा जाता ना, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है और जिंदा मुलायम जिंदा की शान होती, नरम व्यक्ति नम्रता क्या है, कोई दंडवत प्रणाम करना या पेंट भरना या झुक जाना ही नम्रता नहीं है, सहन करना ही झुकना है। और भक्ति में सबसे पहली बात, मंदिर में जाते ही आपको दरवाजे से छोटी छोटी मंदिर देखे आपने कहीं, झुकते ही अंदर जाओ, झुकना सिखाया, वंदनवार सिखाया ना, तो वो हमारा मालूम पड़ता है हमारे बोल से। और चाल, चाल के अंदर हमको बाबा ने क्या सिखाया, चलन, चलन माना रीति रिवाज। ज्ञान में आकर बाबा के बच्चों की अंधश्रद्धा होती है खत्म, जिसको आपने किसी की नजर लग गई, कोई अपशकुन हो गया, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, कितनी बातें बुद्धि में भरी हुई थी, जिस सबका आधार सर्वव्यापी था कि भगवान सब में है, वही ने बनाई थी ये सब बातें। इसके डिटेल में जाओ तो सारे अंधविश्वास की जड़ थी सबको भगवान मान लेना, अभी वो यहां टूटता है। तो चलन के अंदर यदि आपको अंधविश्वास रहता है तभी समझो आप ज्ञानी नहीं। अभी भी चेक करो कहीं कदम रुकते तो नहीं है, ठीक हो गई निकलो मत बाहर, थोड़ा थोड़ा विकल्प आए और कुछ नहीं है, किसी भी कार्य में थोड़ा सा टोकना ऐसा नहीं करो, वो हमारे ही अशुद्ध संकल्पों का क्या है, प्रभाव है, होता कुछ नहीं पर हमारे अंदर कान में किसी ने कि तुमने ऐसा किया ना ऐसा हुआ, क्योंकि जन्म जन्मांतर किसी भी चीज पर दोष रखने की कारण रखने की हमारे भक्ति ने संस्कार बड़े प्रबल किए हैं, और वो प्रबल हुए हमारे जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं था, टाइम पास, जैसे बाबा कहते ना भूंगरे चने थे भक्ति के हमारे हाथ में, आज के व्यवर्धन मूंगफली खा रहे थे पर लग रहा था अच्छा। तो भक्ति ने हमें क्या कराया, भौतिक बौद्धिक ज्ञान नहीं दिया बल्कि एक चलन पर चला दिया, कि रिवाज पर कारपेट बिछा दिया कि हमारे दादे परदादे ऐसे करे तुम भी ऐसा कर, चल रहा है। कोई को हिम्मत ही नहीं है कि ऐसा होता क्या है। जब ज्ञान मिलता है तो ये समझ आती है कि इसके बैक में कारण क्या है। तो हमारे जीवन का पहला लक्ष्य जब निर्धारण होता है ना, तो हमारी चलन में परिवर्तन आता है, ये अनुभव है। देखो इसके ऊपर मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कहानी भी कहनी होती है, वो डायरेक्ट किसी को ना कहकर थर्ड पर्सन की रचना करके बोला गया। एक समय ऐसा था, एक राजा राज करता था, सब मनोगणित कर दिया मनगणित, पर भाव उसका यही होता था उसके थ्रू हमको कुछ समझ आए। तो कहते एक बार एक व्यक्ति था, उसके तीन मित्र थे। एक मित्र था जो 24 घंटे उसके साथ रहता था, अंग संग था। दूसरा उसका मित्र था जो 15 दिन में उसको मिलता था, जो रोज नहीं मिल पाता था। और तीसरा उसका मित्र था जो विदेश फॉरेन में रहता था, जो साल में एकाध बार उसके बुलावे पर या वो आता था मिलन के लिए तो मिलना होता था। एक बार उस व्यक्ति जिसके तीन मित्र थे उससे कोई बड़ा दुर्घटना या केस हो गया। केस हो गया तो उसके वकील या जज ने उसको सलाह दी कि अगर तुम अच्छी गवाही ले आओ तो हम तुम्हारी सजा को कम कर सकते या हटवा भी सकते। तो जैसे उसने ये सुना तो स्वाभाविक है उसे अपना पहला मित्र याद आया कि ये तो जरूर गवाही देगा, क्योंकि ये तो मेरे अंग संग रहता है, 24 घंटे मेरे वो समझने वाला है दुख दर्द को। तो दौड़ कर गया, भैया ऐसे ऐसे हुआ है, आप मेरी मदद कीजिए। तो वंडरफुल अनुभव। वो पहला मित्र बोला तुरंत कि मैं आपका साथ नहीं दे सकता, मुझे अदालत बदल का चक्कर बिल्कुल लाइक नहीं, पसंद नहीं है। तो उसको एकदम धक्का लगा कि है इतना बड़ा धोखा। चलो उसने कहा भी दूसरा मित्र है 15 दिन वाला, तो वो उसके पास गया, बोला भाई तुम ही मदद करो। तो वह मित्र भी बोला कि भाई देखो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे कागज वागज में बनवा सकता हूँ, अदालत तक चल सक, इसके आगे मैं साथ नहीं दूंगा। कहा ये भी गया और उसको फिर एकदम ध्यान आया मेरा फॉरेन वाला मित्र है ना, मैं उसको बुलाऊं शायद वो मेरी मदद करे। तो उसने उसको फटाफट फोन किया, बोला मैं तुरंत आ रहा हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसने मदद की और फायदा दिया है। तो सिंपल सी कहानी, पर ये हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारण करती है। कैसे? एक बहुत बड़ी समझ जो बाबा ने हमको दी कि मैं कौन, उसका एक सरल रूप व्यक्त करती है कि आपके भी हम सब के भी सारे विश्व के भी ये तीन मित्र हरेक के पास। सबसे पहले जब हमारा शरीर छूटेगा तो 24 घंटे वाला साथ कौन छोड़ेगा, बोलो? ये शरीर है 24 घंटे साथ है ना, वो पहले नंबर कौन गिर पड़ेगा, हट जाएगा रास्ते से, देगा साथ जिसके द्वारा हमने कर्म किए पाप किए जो भी किया पुण्य किया। एनीबॉडी, आधार कौन है उसका, व्यक्तिकरण आत्मा ने किससे किया है, शरीर के। वो कहेगा मैं गवाही नहीं दूंगा, दिया उसको भी जला। गवाह का सबसे पहला प्रूफ, इसने मारा इसने पीटा गाली लड़ाई झगड़ा किया यानी बढ़िया ज्ञान सुनाया, पहला प्रूफ कौन चला जाएगा, शरीर, इसके साथ इंद्रियां। दूसरा मित्र है हमारे अपने आप के परिवार के इर्द गिर्द रहने वाले संबंधी, ज्यादा से ज्यादा कहां जाएंगे, शमशान जाएंगे ना, कहेंगे इतना तो बजाओ, कभी भी ना आने वाला भी कहेगा चलो खत्म हो गया अब चल, अभी क्या वेर भाव रखना, चलो। तो कहां तक साथ देंगे, शमशान से आगे गवाही नहीं देंगे कि महाराज धर्मराज जी इसको मत मारिए, हाथ से मारा था, हाथ को मारो, हमारे कहने पे इनको गुस्सा आया था, कोई संबंधी नहीं बोलने वाला, अकेला हो गए ना। और तीसरा मित्र हमारा कौन, जो हमारा लक्ष्य है, हमारे किए हुए एक श्रेष्ठ कर्म जो भले अभी दिख नहीं रहे हैं, बोलचाल रहन सहन में पता नहीं पड़ रहा है, पर साथ कौन देगा, आगे कौन चलेंगे, वही दिए के रूप में व्रत स्थान पर रखते हैं या बाद में सत्संग आदि के रूप में कहते हैं। भाई ज्ञान वो तो जीते जी तो नहीं करते, उसमें समय तो कोई फायदा ही नहीं है, हम तो बचपन से ही अभी से ही कर रहे हैं, तो हम तो अपना दिया खुद ही तैयार, यही तो यादगार का दिया जलाते थे कि भगवान को हमने क्या दिया और भगवान ने हमको क्या दिया, यादगार ज्योति का दिया जला, तो वो हमारा साथ देगा और वो हमारे हैं श्रेष्ठ कर्म। वो श्रेष्ठ कर्म क्या है, जैसे उसको सत्संग कराना, ज्ञान सुनाना, दान करना, पुण्य करना, तो भक्ति मार्ग में भी कहा है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ वहां भी कहा है सेवा में लगाओ, पर यहां सबसे बड़ा पुण्य जो आप करते हो, बहुत बड़ा पुण्य है आपके संयम और नियम, मालूम नहीं पड़ता है आपको, इसका व्रति द्वारा बहुत बड़ा वायुमंडल बनता है और वायुमंडल ही विश्व का परिवर्तन करता है, और जब बेहद में यह परिवर्तन हम सर्व के सहयोग से दिखने लगेगा, इसी को कहेंगे परमात्मा प्रत्यक्षता, विराट का दर्शन। एक नहीं कर रहा है, दो नहीं कर रहे हैं, अनगिनत कर रहे हैं। सतयुग की अवधारणा भी ऐसी ना, कोई तोल नहीं होगी, किसी प्रकार का मैंने मेजरमेंट वहां नहीं होगा मैनेजमेंट के अंदर, तो विराट आना, विराट रूप मतलब हम सबकी धारणाएं उस नियम संयम पर जब आ जाएंगी, चारों तरफ तू ही तू नजर आएगा, कहीं से ये स्पार्क नहीं होगा, कोई आपको मार्क नहीं करेगा, अरे ये चार तो लेते हैं पर ये दो ऐसे हैं, ये चार बजे नहीं उठते, आज बेहद स्थान का प्रभाव भी तो इसीलिए है ना, एक रस एकता यूनिटी। तो ज्ञान का अगर प्रैक्टिकल मेडल है, कोई भी ये समझता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञान सुनता हूं, उसका पहला नंबर मेडल है यूनिटी। ज्ञानी कवि भेदभाव अनेकता, अपनी ढपली अपना रागनी अपना मन मत वाला हो नहीं सकता, वो श्रीमत पर चलेगा और चला, ये हमारा नियम है, उसी के कारण ही हम अनेक धारणाओं को अपनाते हैं। तो ज्ञान के दो पंख हैं, नियम और संयम। नियम माना एक हमारी जो ट्रेन है, हमारी पटरी बन गई जिस पर हमने गाड़ी को डाल दिया, जैसे पटरी देखिए ट्रेन की चिकनी, उस पर चलती ही जाती है गाड़ी, पता नहीं कैसे खींचती, कहते चलिए जा रही, ऐसी नियम एक ऐसी चीज है। आप लगातार 7 दिन कोई भी कार्य उस कर लो, वो आपके मन को प्रेरणे वाला, पटरी पर लाने वाला बन जाएगा। इसलिए 7 दिन का कोर्स सप्ताह गायन है ना, आप लक्ष्य रख लें, कोई भी धारणा आपसे नहीं होती हो, अच्छी धारणा आप 7 दिन कर लीजिए, 8वें दिन आपका मन उसको करवाएगा, कहेगा करो, जब भी मन तैयार नहीं है ना, वो तैयार हो जाएगा। मन को वश में किया ही जा सकता है नियम और संयम के आधार पर। और जो हम रेगुलरिटी में कर नहीं पाते, अगर रेगुलर नहीं बन पाते, तो हमारा उतार चढ़ाव अवस्था में एक रास्ता नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा भी ये दिखाना चाहता है समाज के अंदर कि मेरे बच्चे मेरे हैं। देखो इसके ऊपर भी रामायण के अंदर एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है कि राम जब वनवास में गए तो बाली और सुग्रीव जो भाई भाई थे उनका, उनके परिवार को उसने लेकर बैठा था, तो सुग्रीव ने अपना दर्द अपने दोस्त राम को कहा कि मेरी भी चोरी हो गई है। तो राम ने भी धीरे से कहा, एक ही अवस्था है अपन दोनों की, मेरी भी सीता चोरी पर मित्र अच्छा होने के कारण, मित्रता सिखाने के कारण पहले काम राम ने सुग्रीव का किया। तो बोला क्या प्रॉब्लम? बोले ऐसे ऐसे भगवान, मेरे साथ मेरा सब कुछ लेकर बाली बलवान है, वो बैठा है, चलो भगवान मुझे उससे छुड़वा दो। राम गए तो बार बार सुग्रीव को बाली के पास भेजते थे, तो बार बार वो बलवान था ना, पीट देता था। तो सुग्रीव राम के पास आकर कहता, क्यों मुझे पिटवा रहे हो भगवान, आप तो सर्वशक्तिवान हो। तो राम कहने, एक बहुत अच्छी बात अगर आपने मार्ग की होगी, क्योंकि भक्ति में तो वही आत्माएं बाबा की बनी ने जिन्हें रामायण गीता का अच्छा अध्ययन किया होगा, भौतिक तो याद ही होगा। उसमें राम ने कहा, देखो सुग्रीव, जब तुम बाली से लड़ते हो ना, तो मैं बार बार तीर उठाता हूं, सात ताड़ के वृक्ष, तो सात दिन का कोर्स, ताड़ का वृक्ष के थ्रू मारना चाहता हूं, पर मुझे क्या लगता है, तुम दोनों एक से दिखते हो, शकल सूरत वैसी बाली दिखता है और वैसी सुग्रीव दिखता है, कोई अंतर दिखे तो मैं उसे मारू, इसके तुम्हें भी लग जाएगा। तो बोले मैं क्या करूं? बोले मेरा हार पहन। तो उनके गले में, सुग्रीव के गले में राम ने क्या डाल दिया? हार डाला। तब उनको ये पक्का पता कि ये मेरा बच्चा है और ये माया है। अब भौतिक रूप में उसको अपन ज्ञान से समझे, तो ऐसे जब हम संसार सागर में बाबा हमारा दोस्त बनकर हमारी मदद करता है, तो अगर हमारे को वही रूपरेखा मायावी बाली वाली दिखती है, वही खान पान, वही रहन सहन, वही पहनना ओढ़ना, तो परमात्मा राम भी सोचते हैं कि मैं मदद कैसे करूं। पर अगर हम बाबा की याद का, नियम संयम का हार पहने रहते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद तुरंत आपके पास भेजता है। तो ज्ञान हमको ये कहता है कि हमारी पहचान क्या है समाज के बीच, नियम है ना। अगर वो हमारे जीवन में पक्के नहीं है, तो हम ना तो व्रतधारी हैं। सबसे पहले तो हमें यही चाहिए कि जो हमने अपनाया है, हमने अपनाया है ना, जबरदस्ती तो नहीं है ना। अभी मैं हाथ उठाऊं, जबरदस्ती कैसे है? अरे पहनना ही पड़ता है। आके सुनाएंगे, स्टूडेंट्स भी टीचर्स को सुनाएंगे, बहन जी मैं वहां जा रही थी ना, उसने ऐसा कहा, मैं वहां शादी में गई, उसने ऐसे बोला। मैं ये बोला जब तक है, जब तक तुमने उसको अपनाया, उनकी हिम्मत पड़ नहीं सकती। हमको भारी लगता है ना, तब हमको ही, हम ही वो बात को बोलते। अपना भारीपन कैसे व्यक्त करते? फलाना ऐसा कह रहा था, मैंने ज्ञान सुनाया, उसने मुझे ऐसा कहा। आपने ज्ञान सुनाया, वो कहा, वो आपको फील होने ही नहीं चाहिए, ये फेल है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर मेरा लगन क्या है? मेरा नियम, मेरा संयम ही तो मेरी ड्रेस है, मेरा एड्रेस है। तो मुझे इतनी आत्मसात होना चाहिए वो चीज, कि मुझे दो नहीं कर सके, मैं हूं तो नियम है, नियम हूं तो मैं हूं। और फिर संयम, संयम कहते हैं बैलेंस, जो हमारे जीवन के द्वारा अगर कहीं अनबैलेंस्ड होता है, कैसे मानो कोई मनचाहा काम नहीं हुआ, हम बिफर गए। और यहां तो देखो, जब बाबा के घर आप सब आते हैं, तो ये परीक्षा तो आपकी होना ही है, ये पेपर हॉल में आप आए हैं, सब सुविधाएं आपको एग्जाम देने की, पर मन अपने हाल वाला, जो मन मत वाला है, या थोड़ा सहन शक्ति या दिव्य गुणों की, दिव्य शक्ति की जिसमें कमी है, वो आपको जरूर कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड करने की कोशिश करे। और हमारे बोलचाल स्वभाव में, रहन सहन में अगर इतनी भी शिकन आई, जैसी मेरी भौं आ रही ना छोटी सी, बात देख के ऐसा लगा, तो ये भी किसका अंश हुआ? नापसंदी, असंतुष्टता। तो हमने भगवान के यज्ञ में क्या डाला? असंतुष्टता डाली, ठीक है ना। राम जब यज्ञ रक्षा करने के लिए गए, तो सबसे पहला राम ने किसको मारा? ताड़ का, तड़ाक तड़ाक बोलने वाला भाई। वो कृष्ण ने बचपन में ही पूतना राक्षसी यानी माँ के द्वारा ही उत्पन्न विकृति को मारा, पर राम ने उसी त्रेता युग के पुरुषार्थ में उस पुरुषार्थ को थोड़ा बड़ा होकर करा, तो जीता तो उन्होंने भी। तो क्या था वो? यज्ञ में कौन सा विघ्न था? वो मांस क्या था, वो गंदगी क्या थी, या वो तड़ाक क्या था, वो मारीच कौन था, उसको सो यजन पार फेंका। तो ये सब हमारे द्वारा इसे महायज्ञ के पवित्र, शांत, धवल, ऊंचे, एकरस वातावरण में अगर हमारे द्वारा तन मन धन का सहयोग है, पर व्रती से अगर सहयोग नहीं जाता है, कहीं भी हम अशांति करने के, असंतुष्ट वातावरण फैलाने के, आपस में सुविधा न मिलने पर, असुविधा कहने पर ऋणी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ विश्व का कोई भी जगह संतुष्ट नहीं कर सकती। ये लिख के ले लेना। अगर बाबा के घर में आपके असंतुष्टता की आवाज निकली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा होना, कुछ नहीं है सिवाय आपके मन का ही मैल है। ये इस गंगा तट पर निकलता है, ये सिर्फ आपके ज्ञान की वो कमी है जिसको आपने अंदर में आत्मसात नहीं किया है। अब इसी की ब्रांचेस है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, और आप शिवरात्रि के अवसर पर शिव की बरात बनकर, बराती सो घराती आए हो, संगराती आए हो, पराई जगह नहीं आए हो। कहाँ आए हो? अपने ही घर में, अपनों का ही प्यार लेने, अपने ही घर को शोभा बढ़ाने। तो जिसके अंदर अपनापन है, समझ का पहला रूप क्या है? अपनापन। द्वेत नहीं होगा, परायापन नहीं होगा। तो ये चेक करो कि ये मेरा आपस में देवी परिवार जो मुझे मिला है, इस सृष्टि चक्र के ज्ञान का जो आधार है कि 5000 वर्ष बाद हम सभी किसी न किसी जन्म में कहीं ना कहीं किसी रूप में थे साथ, और आज फिर इस संगम प्लेस के अंदर उस परिवार में हम मिले हैं। तो बिछड़े हुए हम मिले तो कितना खुशी का पारावार हमारा, अपने लिए ही कर रही है। पक्का कर लो, ज्ञान की पहली समझ यही है कि मैं अपने लिए करता हूँ, किसी और के लिए नहीं। पढ़ा है मुरलियों में, कई बार लगता ऐसा है, जैसे मुझे लग रहा मैं आपको सुना रही ना, मैं खुद को खुद सुना रही हूँ, अपने ज्ञान को बाहर निकाल, हवा दे रही हूँ, ज्ञान रत्न है, लगेगा ऐसा मैं दूसरे को दे। इस भान को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो मुझे पांडित्य का, ज्ञान का, प्रवचन करने का, सुनने सुनाने का भेदभाव अहंकार आएगा। अहम कहाँ टूटेगा? मेरे लिए। दान भी किसके लिए कर रहे हो? यज्ञ सेवा भी किसके लिए कर रहे हो? विचार करो, क्या किया है, कितना दिया है और क्या लिया है। अगर ये किसी के मन में भी संकल्प आया, इससे बड़ी मूर्खता नहीं होगी। सबसे 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 ज्यादा सस्ता, सरल और मधुर, और मोटे रूप में कहें सुमधुर आपको प्राप्त हुआ है। अभी क्रोध में कहता बाहर जाके देखना पराये में क्या मिलता है और अपने में क्या मिलता है। विचार करो, आज जो भोजन आप यहाँ ग्रहण कर रहे हो, विश्व के सबसे महंगे कोई होटल ले लो, ताज होटल, एक से एक बढ़ के करोड़ों रुपए की भी एक थाली आपको नहीं मिलने वाली। कहना तो जरा ब्रह्मचर्य वाला कोई बनाकर दे, शुद्ध तरीके से कमाया हुआ दे, मिलेगा? कितने धनवान लगते हो। क्या हो बाबा के घर में? ब्रह्मा भोजन को ब्राह्मण भी तरसते। कदर है हमें? अगर हम आवश्यकता से ज्यादा लेकर फेंकते हैं, आसपास को भी कहते नहीं हैं, कितनी बेकदरी करते हैं। हमें कदर चाहिए अन्न का, पहले अन्न का नियम लेना है, फिर इसी अन्न का हमें प्रत्यक्षता का आधार उसकी कदर करना है। कैसे करूं? सेवा नहीं है, बहुत सरल सेवा है भाई, इतना ही लीजिए, बाबा के घर का कणा दाना है, इसके लिए हम भक्ति में कितने जन्म से तरसते थे, वो हमको कितना मिल रहा है, मिल रहा है ना, गरम गरम छूट गए हम दुनिया के खाना बनाने से। तो कितने ऋणी हो आप बाबा के, अब ऋण गिनाए ना, तो क्या मिल रहा है, चैन की नींद दुनिया में मिली। धन व्यक्ति को क्या दे सकता है, फोम के गंदे नींद दे सकता है, लेके दिखाओ कहीं से नहीं मिली। धन व्यक्ति को चार मंजिल की होम दे सकता है, नर्सिंग होम, हाउस नहीं दे सकता। प्यार भरा साधन टेंट कनात में भी है तो प्यार भरा घर दे सकता है, कितना धन है। धन व्यक्ति को दवाइयों का भंडार दे सकता है, दुकानें दे सकता है, स्वास्थ्य दे सकता है, टेंशन हटा सकता है, तनाव हटा सकता है, नहीं कर सकता है। तो बाबा ने हमें, हम साधन से निर्धन आत्माएं ज्ञान धन के धनी बना दिया, तो हमें क्या मिल गया, ज्ञान से क्या मिला, ये नशा सुनाओ, क्या खाकर आए, कहाँ रहकर आए, क्या पाकर आए हो, आपस की चर्चा में हमारा क्या चलना चाहिए। पद्मों देकर भी हम इसे नहीं पा सकते, तब बाबा ने आपको कहा है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, आप चुनी हुई थोड़ी सी आत्माओं पर प्रभु का प्यार हर प्रकार से बरस रहा है, लुट रहा है, भगवान हम पर लुटा रहा है और हम लूट रहे हैं। यहाँ क्या हो, मिल रहा है, लुट रहा है, तो क्यों नहीं हमारा कहीं से भी आवाज आना, किसी भी प्रकार से आता है तो ईश्वरी यज्ञ में आप क्या डालते हो, विघन डालते हो। कैसे आता है आपके मन में कभी भी ये बात, कैसे सोच लेते हो, क्या दिया क्या लिया, क्या मिला क्या खाया। यहाँ तो हम बहने कितनी भी सीनियर होकर भी अभी साधारण में भी खाते हैं, दाल रोटी भी मिली तो कहते हैं बाबा आपके घर का कणा तो मिला, नहीं मिला, बोलो, वही तो ताकत दे रहा है ज्ञान सुनने की, और वही ताकत आज आपको बाहर जाकर भी बाबा के बने रहने की शक्ति देगा। तो ज्ञान हमको क्या देता है, समझ, अंदर में लाओ, ऊपर ऊपर नहीं समझ लो कि मैंने सफेद ड्रेस पहन ली, बैस लगा लिया, मधुबन हो आया और बड़े मजे से गा रहा हूं, सखीरी मैंने पाए तीन रतन, नशा चढ़ा आसमान का, एक बाबा एक मधुबन एक मुरली, मिले तो तीन, तीन रतन पा लिए, पर उसके बाद शुरू होता है अंदर में आना। मुरली मिली, यथा स्थान जाकर यथा जगह जाकर दीदियों के कनेक्शन से मैं आश्रम पर सुनता हूँ, मुरली बरस तो रही है इंटरनेट पर, बरस तो रही है टीवी के द्वारा, पीस ऑफ माइंड पर भावा के जो बच्चे होंगे ना, उनको उसमें सिर्फ बेहद के विहंग सेवा के लिए वो कार्य है, आप बच्चों के आलस्य के लिए नहीं है। क्या करना वहां जाके, मुरली यहीं तो मिल जाती है। अगर आपने ऐसा बोला तो बाबा की प्रत्यक्षता में आपने क्या डाला, विघन डाला। आपके लिए राम जी संसार बनाई नहीं, बहुत मजबूरी में, बहुत आलस्य पर, या कभी आपको कोई संगठन में ऐसा आया तब बाई चांस है। अगर रोजाना मैं सुनने में देखती हूँ कई आत्माओं को, बड़ा नशा, पैसा है भाई हमने टीवी लगवा ली, पैसा है इंटरनेट अच्छा मोबाइल ले लिया, मुरली पढ़ता ही रहता हूँ, इतना नशा, आश्रम पर जाकर नहीं सुना, जीरो, समझ रहे हैं, क्लास आपने जाकर नहीं करी, जीरो, थ्रू ज्ञान नहीं है ये डायरेक्ट ज्ञान है, ये समझना, क्योंकि धीरे धीरे आकाश मार्ग की सेवा ऐसी होने वाली है कि पानी की बूंद डायरेक्ट आसमान से आपके ऊपर गिरेगी, पर अहंकार में नहीं आना है। लाभ देते और लेते हमको बाबा के संयम और नियम को ये ज्ञान कहता है तोड़ना नहीं है। अगर ऐसा है, मैं मधुबन भले आ गया हूं, पर अगर मुझे ऐसा लगता है पास में ही आ रहे, मैं क्या आश्रम मुरली सुन, मुझे वंडर लगता है बहुत सी आत्माएं सीनियर होकर भी ऐसा बोले, समझा नहीं है आपने, मुरली मैगजीन में कितना अंतर है, तो वो नियम अमृत वेले मेरा उठना, बाबा के घर की मुझे कदर करना, बाबा के स्थान की मुझे कदर होना, जो कदर करेगा वही कदर पाएगा और कदरदान बनेगा, है ना। तो ये है छोटी छोटी बातें, पर ये संयम में भी आती हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे संयम नियम में जो आता है वो रेगुलरिटी हमारी छूट जाए, फिर मत कहना मैंने पाया मधुबन मुरली। जिन्होंने मुरली मधुबन पाया उन्होंने रेगुलर क्लास और सेवा जरूर करेंगे, नहीं तो अहंकार आएगा, दीदी भी कहां लगती। मैंने बहुत पा लिया, मैं सीनियर हूं, इनको भी सिखा सकती हूं। नहीं, भक्ति में भी गुरु की इतनी कदर होती है। भले बाबा ने आज हमारा मोह हमारी निमित्त आत्माओं में न फंसे इसके लिए नियम दिया, पर कराता तो बाबा निमित्त आत्माओं के द्वारा ही है ना। हमारा रिस्पेक्ट रिगार्ड तो उनके प्रति हर दम होना चाहिए ना। मन मत करने वाले सिद्ध करते हैं, दूसरों से राय सलाह लेकर चलने वाले सिद्ध करते हैं कि निमित्त आत्मा की आपको कदर नहीं है। तो ज्ञान कभी नहीं सिखाता अपनी माँ की कदर न करो। मातृ सेवा क्या है, गुरु सेवा क्या है, पितृ सेवा क्या है। भक्ति में तो आपको भौतिक बात के लौकिक में स्थित कर दिया कि उनकी सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, गौ सेवा बताया ना। पर ज्ञान मार्ग की सेवा है निमित्त आत्माओं की कदर, वही आपके लिए सब कुछ है। ऋणी रहना पड़ेगा आपको, न मिलते तो क्या करते। जिसने आपको मार्ग पे चलाया वो क्या है, बाबा बल है, पर बाबा का कार्य प्रत्यक्ष तो आपके द्वारा ही होना है ना। बाबा हमारा सतगुरु है तो उसकी कदर आपके नियम और धारणा से होगी। तो ज्ञान हमको छोटी छोटी बातों की भी, वो आप समझते नहीं है, लगता हाँ चलता है पर चलता नहीं है, आप में ज्ञान नहीं चलता। फिर बाबा और श्रीमत अलग नहीं है, ज्ञान और श्रीमत अलग नहीं है, ज्ञान और निमित्त आत्माएं अलग नहीं है, ज्ञान और बाबा का घर अलग नहीं है, ज्ञान और सेवा अलग नहीं है। योग माना क्या, यही अवधारणा कि मुझे हर कार्य में बाबा का सहयोगी रहना है। तब यहां पर साधारण सी बात में आप रोज भोग लगाकर खाते हो, क्योंकि आपको पता हो कि गरीबी का आधार ही ये बना। सुदामा की एक कहानी आती है कि सुदामा गरीब क्यों बना, बहुत मोटी सी बात है, भगवान के हिस्से के चने खा गया। कहानी है इस पर। भक्ति मार्ग में तो हम खाते ही रहे, पर अब तो हमारा किस्सा ही है भगवान के साथ खाएंगे, भगवान को खिलाकर खाएंगे, भगवान के बच्चों को खिलाकर खाएंगे, अकेले कैसे खाएंगे। मेरा दोस्त मेरा साथी सर्व संबंध से निभाना माना योग। मेरा दोस्त भी कौन है, भगवान की श्रीमत निमित्त आत्माओं के द्वारा आश्रम से आपको मिली, आपने उसको जाकर किसी से वेरीफाई कर दीदी ऐसा करे इतना करे ऐसा करे इतना डाले, क्यों पूछते हो। मन और बाबा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आपको ये पता हो ज्ञान मार्ग पे ग्रहण लगता है संग दोष का सबसे ज्यादा। ज्ञान को अपन भक्ति में सत्संग कहते थे, यहां पर अपन ज्ञान कहते नित्य श्रवण, और सबसे पहला इस पे दोष लगता है कुसंग का। और कुसंग की पूरी कहानी है महाभारत, कैसे कुसंग लगता है, इतना नहीं इतना करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अच्छा चलो बाबा ने कहा है ना, अभी मुरली अपन सुनते हैं, बाबा ने मिलिट्री के लिए क्या कहा, बाबा ने कोई अति बीमार के लिए क्या कहा, अच्छे खासे के लिए तो नहीं कहा ना। पर अपन क्या करते हैं, बाबा की श्रीमत पे चलना है ना, तो मुरली में जो मिलिट्री के लिए कहा है ना कुछ खा सकते हैं, हम तो खा लेते हैं, डंडा नहीं पड़ेगा, दंडवत प्रणाम नहीं करना पड़ेगा। किसके लिए कहा बाबा ने, मुरली को भी समझना बाबा कब किस लहर में और किस आत्मा को किस भाव से क्या सलाह और राय देते थे, वो राय आपने डायरेक्ट ऐसी मानी, पत्थर की लकीर। बाबा भी तो मुरली में कहता है, दीदी क्या कहती, लो ये क्या मुरली की कदर हुई। अरे इतनी तो सद्बुद्धि, भले आपको इतनी छुट्टी मिली है कि अपने आप मुरली पढ़ लो, पर पढ़ने में ये तो समझ आना चाहिए ना कि बाबा किन के लिए ये बात कहता है। उसके इतने भोले, इतने भोला भंडारी हो गए हम, हमें समझ ही नहीं आ रहा। जो मैं फिर मोटे रूप में बोलती कि इंटरनेट पे मुरली किसके लिए आ रही, बाबा ने नियम थोड़े से हल्के किसके लिए किए, दृढ़ विश्वासी ध्रुव और प्रहलाद के लिए, अंगद के लिए नहीं किए है ना। तीन प्रकार के पुरुषार्थी बाबा बोलता है ना। तो जो कमजोर आत्माएं कमजोर सलाह को जल्दी पकड़ती, अरे एक बार तो अपनी आत्मा की आवाज सुनो, आत्मा क्या कह रही है। आप सभी इन बुक से बोलते अब घर चलना है, अंत समय आया है, सफल करना है। और आप आत्मा जो रोज मुरली में सुन रही सफल करना है, और किसी ने आपसे सलाह दी, मनोज ने कहा हम इतना करें, बोले नहीं इतना इतना करो, चलता भी और जगह करना, 10 जगह भंडारी रखी है, यही कर लोगे तो क्या है, थोड़ा थोड़ा डाल देना, 500 देवता है यहाँ पर। क्या कहा, क्यों दी ऐसी सलाह, बाबा ने मुरली में कही ऐसी सलाह। और हितेशी बन गई वो आत्मा, दीदी से भी ज्यादा, निमित्त बहनों से भी, भाइयों से भी ज्यादा अपनापन आया। पर ये नहीं सोचा कि कहां से संग दोष आपके अंदर आया, जो बहुत दान करना जो खुद नहीं जानता है ना, वो आपको सलाह देगा, बताओ देगा। और वही बात दीदी से पूछना आप, वो तो डायरेक्ट कनेक्शन देते नहीं है, पावर हाउस सीधा खारा पानी आप पी नहीं सकते ना। तो बाबा क्या कह रहा है हर ग्रस्त आत्मा के लिए, डायरेक्ट कनेक्शन पावर हाउस का जोड़ो, तो शिव बाबा का मुरली को डायरेक्ट कोई पकड़ ही नहीं सकता, पकड़ा है जिन्होंने उड़ गए, समर्पित हो गए। ये तो डीसी करंट को एसी करंट निमित्त दीदी दादियों ने या हम सब ने करके आपको मीठा पानी आपके शहर के सेंटर पर दे रहे, हल्का करके कि थोड़ा सा झटका लगे, पूरा झटका दे रहे। वही घर से मेरे के चलो, थोड़ा कारोबार भी निभाते चलो, बाबा क्या कह रहा है, समय क्या कह रहा है, सब प्रत्यक्षता का आधार क्या है, बाबा की बात को जो है जैसे पकड़ना। तो ज्ञान माना हजारों शब्दों में वो पकड़ करना, वो कैचिंग करना जो बाबा की बात से हमारी सोच मिले, अपनी सोच को देखना। अगर हमारी सोच पावरफुल नहीं है तो हम संग दोष में आएंगे, नहीं तो ऐसी पावर हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारे सामने एक तो हिम्मत नहीं पड़े, और हिम्मत पड़े तो हम उस बात को काट करें, हर चीज की काट है। तो ज्ञान माना तलवार, वो देती है हमको क्या, काट। अगर हमारी काट कमजोर है तो क्या कहेंगे, आपने उस चीज को अभी उस सेवा को स्वीकार नहीं किया है, हनुमत माफिक, करने के बाद दोबारा तैयार नहीं, तो सेवा भारी कम मालूम पड़ जाती है। आज कोई सेवा मिली हो कल फिर मिल गई, तो सोच देखना आपने, अभी अभी तो किया, अभी अभी तो भारी लगी ना। पर हनुमान के व्रति में क्या दिखाया, सेवाधारी का परम मिसाल, तुरंत एवर रेडी बैठ जाता था, खोज ऐसा एक पैर ऐसा कर फिर आज। तो सारे हमारे जीवन के अंदर हमारी उन्नति का आधार, प्रत्यक्षता का आधार हमारा बैज भी है। ये बैज जो लगाते हैं ना, ये भूलना नहीं चाहिए। ड्रेस के साथ क्या अटैच है, हमारा बैज। और बैज हमको सारा याद दिलाता, मैं कौन, मैं आत्मा तो हूं। तो याद कैसे रहता है बैज, किसी यहां पर भी आपको बैज दिया ना कि इसके बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, तिकोना बैज जरूर लगाए रखना है। क्यों, क्या याद दिलाया आपको कि आप शुद्ध आत्मा, बाबा के हकदार आत्मा, बाबा के बच्चे आत्मा, बाबा के घर में आपका वेलकम है, आपके ऊपर ठप्पा लग गया है, लगाया ना, प्यार से उसको स्वीकार किया। तो ये भी प्रत्यक्षता का आधार। इसके बाद हमारे जीवन में बाबा की प्रत्यक्षता का आधार आपके द्वारा तीन शब्दों का कनेक्शन है। एक तो आपके जीवन में निरंकारिता दिखना चाहिए, अहंकार नहीं झलकना, मतलब बहुत ऊंची चीज आपको मिली है, पर ऐसे ना हो कि चूहे को हल्दी की गांठ मिली और पंसारी समझ बैठा, ऐसे तो नहीं हो गए। हे माला माल हो, सौदागर बाप के सौदागर बच्चे हो, पर लेकर दे रहे हो किससे? आपका कुछ नहीं, हम सब किसका दे रहे हैं? ईमानदारी से। बेईमानी कब आती है? जब हम सोचते हैं मैंने सुना, मैंने किया, मैंने इत्तो को चलाया, मैं इत्तो को आश्रम, कैसे निकलता है? मैं स्कूल आया। अरे बाबा ने आपको ज्ञान नहीं दिया होता तो किसी को आप कैसे? वो नशा चढ़ गया, 10 को मैं लाया, 5 को मैं, इत्तो को मैंने सुनाया नहीं। महिमा किए भूखे मत पर। इस समय महिमा का दान आपको भविष्य में क्या दिलाएगा? महिमावान बनाएगा। तो अहंकार चेक करो, आपको पता नहीं पड़ता, बहुत जल्दी अहंकार आता है। आप सफेद वस्त्र पहने और आप सुकुड़ कर ऐसे ऐसे करके बैठे ट्रेन में भी, तो ये भी अहंकार झलका आपके वस्त्र से। भले आप तरीके से बैठो वो बात ठीक है, पर अहंकार से कहेंगे तो सामने वाला, आप बगल वाला लड़ेगा आप, जरूर लड़ेगा। हम रंगीन दुनिया में रहकर भी अहंकारी नहीं, हम उनको बीच में जाकर ही हंस बनकर उन बगलों का सुधार करने वाले हैं, बगल झांकने वाले नहीं। हम वो योगी आत्माएं हैं जो हम संसार के बीच रहकर भी लोगों को बाबा की याद दिलाने वाले हैं। तो निरंकारी, और फिर हमें दिखना है सबके बीच निर्विकारी। क्या दिखना है? कि हम 5 विकारों को, इसके साथ साथ उसके भाई बहन पूरी रावण सेना को जलाने वाले, दशहरा मनाने वाले निर्विकारी पाप कठोर बाबा की संतान है। तो निर्विकारिता दिखना चाहिए, हर बोल चाल व्यवहार देख रेख में हमको दिखता है कि हमारी दृष्टि में कहीं चंचलता है तो भी देखो रामायण का कितना बड़ा मिसाल गायन है। मुझे तो बहुत इस चुप में एक एक बात उसमें सिखाई। सीता को देखो कितना अच्छा राम ने सजाया पुष्पाटिका में, कहीं जैसी कौवे ने आके पैर में चोंच मार दी। कहते हैं उसको 3 लोक में बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, और आखिर में उससे कहा कि जिसकी चरण को तुमने देखकर दृष्टि चंचल करी वहीं जाओ, उसी से माफी मांगो। पवित्रता का भी कम गायन नहीं है रामायण गायन है ना। तो हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, हमारी सोच और हमारी एक रस अवस्था, ये सारी हमारी निर्विकारिता को दर्शाती और हमारी निराकारी स्टेज। निराकारी माने उपराम, न्यारा और प्यारा, साक्षी अवस्था। ये अंत में कर्मातीत बनाने के निमित्त बनती है। साक्षी अवस्था माना पूरा चक्र की नॉलेज हमारी बुद्धि में, कि हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक अपना रियल रोल बजा रहा है। मैं ड्रामा को रोल बजाने वाला हूं, रोल बिगाड़ने वाला नहीं हूं। मैं सीट पर सेट होकर पिक्चर के हर दृश्य को देखने वाला हूं, है ना? पिक्चर देखा ना तो बालकनी में बैठ के साक्षी हो, कैसे नहीं पिक्चर में सीन गलत हो चिल्ला पड़ो, अरे सीन गलत चल रहा है, अज्ञान में जैसे होता है, तो हम उसमें सुधार नहीं, हम क्या करें? डायरेक्टर ने बना दिया ना, और मैं सब उस डायरेक्टर की पत्नी यानी बाबा की सखा या सखी या दोस्त हूं। तो मैं तो पिक्चर को बनाने में सहयोगी हूं, ना कि पिक्चर के अंदर इंटरफेयर करने में। ये पिक्चर ठीक नहीं बनी, भगवान ने ऐसा बहुत भक्ति मार्ग में क्या करते आए, बुरा किया, किसको बोला? पिक्चर को बुरा बोला ना, ये सीन अच्छा नहीं है, भगवान ने मार ऐसा कर। अभी ज्ञान मार्ग में वैसा तो नहीं बोलते हैं, पर बुरा फील होकर बुरा व्यवहार किया तो पिक्चर एक्सेप्ट नहीं हुआ ना। पर बाबा ने रोज इस बात को बुद्धि रूपी ज्ञान की ओखली में कूटा है कि एक का मिले ना दूसरे से। आज के संसार में भी आप देखो धीरे धीरे ये हाथों की रेखाओं पर आ रहे हैं ना लोग, ऐसे हाथ डाल रिजर्वेशन होगा इन्हीं पर, ये किसी से नहीं मिलती, एक संसार में एक की दूसरे से। तभी अंगूठा लगवाते हैं ना, एक मोटे रूप की बात। स्वभाव संस्कार भी इस संसार के वैरायटी खेल में एक का मिले ना दूसरे से, पर हमारी सबकी क्या है, टीम है, टीम गेम है, पर वैरायटी है। तो मूल बात हमको विजय लाना है। वहां के भी रूल्स रेगुलेशन एशियाड आदि के भी ऐसे ही भगवान के घर में भगवान के बच्चों के साथ विविध ड्रामा के अंदर विभिन्न स्वरूप शकल स्वभाव रहन सहन देश विदेश पहनाव खान पान सब वैरायटी। कल्प वृक्ष क्या है? बीज बाबा है पर वैरायटी वृक्ष निकला है। अनेक धारणाएं वाली आत्माएं इसमें हैं, पर उनके बीच रहकर ऐसा ज्ञान आपको मिला है वंडरफुल सोल्युबल। कैसा पानी, ज्ञान जल कहा ना, तो पानी में आप डालो कुछ भी चीज क्या करती है, ऐसा फैक्टर है जो घोल देती, कलर बदल लेगी। वैसे तो स्वभाव कैसा चाहिए अपना, कैसा भी मैटर आए हमारे स्वभाव में घुलनशील स्वभाव मिलनसारिता सरल स्वभाव, उस आत्मा को हमें एक्सेप्ट करना आना है। अगर हमने डिसरिगार्ड किया, घृणा की, नफरत की, चार लोगों में कहा ठीक नहीं है, ऐसा नहीं वैसे, भगवान बच्चे भी ऐसा करते, अरे ये भी ऐसा, क्या कैसे बोलते समय शक्ल सूरत देखो आप कैसी हो जाती, नहीं आना चाहिए। ज्ञान कहता है आपको, ज्ञान है ना ये ज्ञान, लड़ाई झगड़ा थोड़ा भी बोल चाल पर चिंतन निंदा ईर्ष्या वैर द्वेष ये सब क्या सिद्ध करते हैं, अज्ञान। ज्ञान क्या सिद्ध करता है, जो हूं जब उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया, कोई एक विशेषता शेष में बची। हम ब्राह्मण तो दलदल में चोटी तक बिल्कुल दब गए थे, जरा सा चोटी दिखी बाबा ने हमें खींच लिया, किस विशेषता के आधार पर, कोई विशेषता नहीं, पर ये तो है रोज सुन रहे हैं ज्ञान बाबा का, मुरली सुन रहे हैं, बाबा के घर आते हैं, यदा कदा यथाशक्ति सेवा करते, नफरत नहीं करना, ज्यादा सेवा करने वाले थोड़ी सेवा वाले को छोटा नहीं समझना, बाबा को लौकिक में भी माँ को सबसे ज्यादा कदर किसकी होती है पता है आपको, बीमार बच्चे की, अपहिज बच्चे की, कमजोर बच्चे की, बाबा को भी सबसे ज्यादा प्यार किससे है पता, सासा। हम तो है बड़े, तो बड़े हैं ही पर छोटों से बहुत प्यार है। और बाबा ने हम कुलदीपकों को पैदा किया है एक एक परिवार में, एक एक बाबा इकट्ठा कैसे संभालता, आपको ड्यूटी दी आपके परिवार की, रहम दया स्नेह ज्ञान सहयोग सेवा के आधार से उन सबको आप बाबा का बनाने के निमित्त हैं। आपको सहन करना है क्योंकि आप कुलदीपक, आप ब्राह्मण हो, आपको आदि से अंत तक संस्कार कराने में मददगार भी बनना है। देखो ब्राह्मण क्या है, पैदा होने से लेकर मुंडन लेकर मरने तक ये ग्रस्त नहीं हुआ, सारे संस्कारों की जिम्मेवारी किसको दी गई है, कहां भी देखो ब्राह्मण एड होगा, शादी हो ब्याह, इसे आप सभी वो ब्राह्मण हैं जो घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए भी सब संस्कारों में साथ देते हुए भी बाबा की प्रत्यक्षता का सबसे बड़ा आधार आप आत्माएं हो, तो कम नहीं हो, छोटे नहीं हो, बाबा की नजर में हम सब बहुत 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 बड़े हैं, है ना। पर बड़े बनने के लिए क्या चाहिए, है ना, मुखिया मुखसा चाहिए, खान पान को एक, बोल चाल को एक, मुखिया मुखसा चाहिए, मुख आधार है ना, मुखिया मुख से लगा है। तो हमें कभी भी अपने अंदर ये चेक करो निरंकारिता में कि कहीं भी ये तो नहीं आता मैं बहुत यज्ञ सेवक ये कुछ भी नहीं कर, नहीं, हे तो आपका ही भाई ना, हे तो आपकी ही बहन ना, आपका ही परिवार है ना, हम चार मिलकर, चार धनवान मिलकर एक गरीब। आज भी अपन को कभी नेतागिरी में क्रोध आता है तो कहते हैं ना, अगर ये नेता ही अपना पैसा दे दे तो गरीबी खत्म हो जाए, ये जादू टोना राख को सोना दूध बनाने वाले ही दे दे तो ये खत्म हो जाए। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि हम बच्चे सबके साथ मिलकर मिलनसार बनकर बाबा के कार्य में मददगार हैं। ओम शांति। हमारी दादी जी पधार रही हैं। सभी एक हाथ की ताली बजाकर दादी जी का अभिनंदन करेंगे। आदरणीय दादी जी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सभी भाई बहनों की ओर से। हम सबकी जान कहें, हम सबकी आश पूरी करने वाले कहें और हम सबको रत्नों से मोहने वाली दादी आज हम सबके बीच में है। और दादी जी के लिए तो मैं बहुत ज्यादा ना बोल करके कुछ शब्दों में कहना चाहूंगी कि फकीरी में तुम मुझे अमीर नजर आते हो, तूफान में तुम मुझे साहिल नजर आते हो। मैंने खुदा को तो नहीं देखा पर इस शक्ल में दादी जी आप मुझे खुदा ही नजर आते हो, आप मुझे खुदा ही नजर आते हो। मैं समझती हूँ हम सभी का इतना सौभाग्य तो नहीं रहा कि हमने साकार बाबा को देखा हो, लेकिन आदरणीय दादी जी को देख करके, दादी जी की पालना को देख करके, दादी जी की रूहानियत को देख करके हमें बाबा की भासना मिलती है। और हम सब यही कहते हैं कि दादी जी चांद से प्यारी है चांदनी, और चांदनी से प्यारी है रात, रात से प्यारी है जिंदगी, और जिंदगी से प्यारी है आप। तो ऐसी दादी जी हम सभी के बीच आप सबसे मिलने के लिए, आप सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए हम सबके बीच में हैं। तो आदरणीय दादी जी अब आप सभी से मिलेंगी।